शिवांशा वेद के साथ स्पा आई हुई थी। जब वेद शिवांशा के साथ अंदर दाखिल हुआ था, तब उसने लीला को भी वहां देख लिया था। वेद ने शिवांशा को अंदर भेज दिया और खुद बाहर मौजूद था। अगले आधे घंटे में शिवांशा जब अपना हेयर स्पा करवा रही थी, तब अचानक उसे किसी के चिल्लाने की तेज आवाज सुनाई दी। शिवांशा को पता नहीं चला, लेकिन वो आवाज लीला की थी, जो इस वक्त खुद को आईने में देखकर गुस्से से उबल उठी थी। वहीं लीला के चिल्लाने की आवाज सुनकर शिवांशा घबरा गई थी। वो उठने की कोशिश करने लगी, तभी उसके पीछे खड़ी लड़की ने कहा, मैम प्लीज लेटे रहिए। वो बाहर क्या हुआ है, कोई इतना जोर से चिल्ला क्यों रहा है, शिवांशा ने जल्दी से पूछा। कई बार कस्टमर को मन मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और कुछ लोग आसानी से संतुष्ट नहीं होते। इस तरह के गुस्सैल लोग आते रहते हैं, आप स्ट्रेस मत लीजिए, खुद को कंफर्टेबल कीजिए, ये हमारे लिए नया नहीं है, लड़की ने नरम लहजे में शिवांशा को सब कुछ समझाया। शिवांशा फिर से स्थिर होकर लेट गई थी। उसने मन ही मन कहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज़ जानी पहचानी सी है, शायद मेरे मन का वहम होगा। शिवांशा ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से आंखें बंद कर ली थीं। वहीं लीला लाल आंखों से खुद को आईने में देख रही थी, जहां उसके लंबे खूबसूरत बाल अब उल्टे सीधे कटे हुए कंधे तक के बालों में बदल चुके थे। एक पल के लिए लीला को खुद को आईने में देखकर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल शांत रहकर खुद को घूरने के बाद वो फिर से जोर से चिल्लाई। लीला अपनी जगह से उठी और खुद का ट्रीटमेंट कर रही लड़की के बालों को जोर से पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों के साथ ये सब करने की, मैं यहाँ बाल कटवाने के लिए नहीं आई थी, फिर तुमने मेरे बाल कैसे काटे। हाँ छोड़िए मैडम, मुझे आप यहाँ हेयर कट के लिए ही आई थी और मुझे यही इंस्ट्रक्शन मिला था, अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी, उसका ट्रीटमेंट कर रही लड़की ने भौहें से कोड़ते हुए कहा और फिर वो भी जोर से चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी समबडी प्लीज हेल्प मी। उस लड़की ने जैसे तैसे करके लीला को खुद से अलग कर दिया था, वो भी उसे गुस्से में घूर कर देख रही थी। इस बीच सिक्योरिटी और वहां का हेड स्टाफ वहां पहुंच चुका था। लड़की ने तुरंत अपनी मैनेजर की तरफ देखा और कहा, देखिए मैडम ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं, मैंने खुद इनके फॉर्म को अच्छे से देखा था, वहां हेयर कट और बाकी चीज़ें अच्छे से मेंशन की गई थी, इनका हेयर कट इस वजह से ख़राब हुआ क्योंकि जब मैंने इनके बाल काटने शुरू किए तो ये बुरी तरह हिलने लगी थी, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। इतना कहकर उस लड़की ने लीला का कंसेंट फॉर्म उनके सामने रख दिया था। पूरा फॉर्म देखने के बाद मैनेजर ने लीला की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, आप मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती हैं, सब कुछ आपके कंसेंट के बाद ही हुआ है, मैं आपका हेयर कट सही करवा दूंगी और ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ किसी तरह का तमाशा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम पुलिस बुलाओगी? हाँ पुलिस तो यहाँ मुझे बुलानी चाहिए, खुलेआम झूठ बोल रहे हो तुम लोग, लीला ने दांत पीसते हुए कहा और मैनेजर के हाथ से फॉर्म छीन लिया था। लीला की आंखें हैरानी से फैल गई थीं जब उसने फॉर्म को पढ़ा, उसने ये सब बिल्कुल नहीं भरा था। उसने एक नज़र अपना ट्रीटमेंट कर रही लड़की की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ये सब इस लड़की का ही किया धरा है, ये झूठ बोल रही है, ये सच है कि फॉर्म मैंने भरा था, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मुझे इनके बाल काट कर क्या मिलने वाला है जो मैं इनका हेयर कट जानबूझ कर खराब करूँगी, उस लड़की ने अपनी सफाई में कहा। एक पल के लिए भी वो बिल्कुल नहीं डरी और ना ही उसे इस बात का डर था कि उसकी नौकरी चली जाएगी। ये तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें बाल काटकर क्या मिलने वाला था जब मैं तुम्हारा हाल अपने जैसा नहीं कर दूंगी लड़की, लीला ने गुस्से में तेज सांस लेते हुए कहा और फिर वहां रखे कैंची उठा ली थी। देखिए मैडम अब आपकी हरकतें हमारे बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं, आप यहां से बाहर चली जाइए वरना मैं नहीं चाहती कि हम हमारे कस्टमर को धक्के मारकर बाहर निकालें, मैनेजर ने सख्ती से कहा। अच्छा तो तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मुझे लीला राजावत को धक्के मारकर बाहर निकालोगी, लीला ने दांत पीसते हुए कहा। लीला उस लड़की की तरफ बढ़ ही रही थी कि मैनेजर ने सिक्योरिटी की तरफ इशारा किया और दो आदमियों ने आकर लीला को पकड़ लिया था। उसके बाल काफी बुरी हालत में थे, उल्टे सीधे कटे हुए और उसे उसी हालत में स्पा से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। लीला वहां से जाते हुए चिल्ला रही थी, मैं तुम लोगों के स्पा को बंद करवा दूंगी, अरे पुलिस आएगी यहाँ पर, देखना तुम लोग जानते नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है, लीला राजावत को परेशान करने वाले इंसान को मैं चैन से जीने नहीं देती हूँ। जब लीला को बाहर निकाला जा रहा था तभी शिवांशा के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज पड़ी थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कर रही लड़की के कहने पर शिवांशा ने इतना ध्यान नहीं दिया। वहीं जब लीला को बाहर निकाला जा रहा था तब स्टाफ भी उसके आसपास ही था। जिस लड़की ने लीला के बाल काटे थे उसने वेद की तरफ देखा, वेद ने भौहें उठाते हुए थम्सअप का इशारा किया। वेद ने ही उस लड़की को ये सब करने के पैसे दिए थे, उसने पहले साफ मना कर दिया था लेकिन वेद ने फिर उसकी जॉब सिक्योरिटी और यहाँ से दूसरे शहर में एक पूरा स्पा देने का वादा किया था। हाँ वो जो कर रही थी उसके लिए ये कीमत काफी ज्यादा थी, पर उसका काम भी खतरे से खाली नहीं था। उस लड़की ने लीला के फॉर्म में पहले से ही गलत चीजें लिखकर उस पर साइन करवा लिए थे। जैसे ही लीला को बाहर निकाला गया मैनेजर ने उस लड़की की तरफ सख्त निगाहों से देखा और कहा, मैंने उसके सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिलेगी, तुम्हारी वजह से हमारा एक इम्पोर्टेंट कस्टमर हमेशा के लिए चला गया है, ऊपर से ये औरत एक बड़ी फैमिली से आती है, चुप नहीं रहने वाली है, तो क्या आप मुझे काम से निकाल देंगी, उस लड़की ने हल्की घबराई आवाज में पूछा, जबकि इसका नतीजा वो पहले से जानती थी और कहीं ना कहीं तैयार भी थी।
हाँ, उसकी तसल्ली के लिए यही करना होगा। फिलहाल तुम कुछ महीने कहीं और ज्वाइन कर लो, बाकी तुम्हारा काम अच्छा है तो मैं वापस बुला लूंगी, मैनेजर ने जवाब दिया। उस लड़की ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था और ऐसे जता रही थी जैसे उसे वहां से जाते हुए न जाने कितना दुख हो रहा हो। अंदर मैनेजर उस लड़की के साथ सेटलमेंट कर रही थी, तभी वेद बाहर अचानक लीला के सामने पहुंच गया था। वेद को अपने सामने देखकर लीला को समझते देर नहीं लगी कि ये सब किसकी करतूत हो सकती है। ये सब तुमने किया है ना, लीला दांत पीसते हुए बोली। वेद ने कंधे उचकाए और बेपरवाही से कहा, आपकी गलती है, आपको उसके बालों में हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था। तो तुमने मेरे साथ इसीलिए ये किया क्योंकि मैंने उसके बाल खींचे थे? संभल कर वेद सिंह चौहान, अगली बार सीधा गले में हाथ डालूंगी और तब तक जब तक उसकी जान नहीं निकल जाएगी मैं उस लड़की का गला नहीं छोड़ने वाली हूँ, लीला ने गुस्से में उबलते हुए कहा। संभल कर, मुझे नहीं आपको रहने की जरूरत है। सोचो, सिर्फ बालों में हाथ डालने पर यह सजा मिली है, तो अगर गले में हाथ डाला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका शरीर और गला अलग अलग मिले, और मैं आपकी तरह कोरी धमकियां भी नहीं देता हूँ, वेद ने ठंडी आवाज में कहा। वेद के चेहरे के हाव भाव और आवाज सुनते ही लीला के माथे पर खुद ब खुद पसीने की बूंदे उभल आई थी। वो कुछ कदम पीछे हटी और बड़बड़ाते हुए बोली, तुमने मेरे साथ जो किया है मैं उसे इतनी आसानी से जाने।
इतना कहकर लीला वहां से जाने लगी। वेद के चेहरे पर हल्के शिकन के भाव थे। वो लीला जैसी औरतों को अच्छे से जानता था। वो सीधे वेद पर कभी वार नहीं कर सकती थी। इसका बदला भी वो शिवांशा से निकालने वाली थी। वेद चाहे शिवांशा को कितना भी समझा ले, लेकिन लीला के सामने वो बुरी तरह घबरा जाती थी। लीला ने अपनी दाढ़ी के पास कुछ ही कदम बढ़ाए होंगे कि वेद ने पीछे से कहा, अगर आपने इस बार शिवांशा को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी सजा आपके बेटे को भुगतनी होगी, और अब मैं उस पर किसी तरह का रहम नहीं खाने वाला हूँ। लीला के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो तुरंत वेद की तरफ पलटी। तभी वेद ने अपने मोबाइल की स्क्रीन निकालकर लीला के सामने कर दी थी। अंकुश जमीन पर गिरा हुआ था, उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। फोटो साफ नहीं थी, लेकिन हाँ, उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया है। ये असली नहीं है, तुम मुझे डरा रहे हो ना वेद, ये असली नहीं है ना, लीला ने कांपती आवाज में पूछा। जहां लीला गुस्से में तेज और उबलती आवाज में बात कर रही थी, वहीं वेद की आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन हाँ, उसका लहजा काफी ठंडा था, जो किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। बिल्कुल असली है, मैंने सुबह ही तो आपको बताया था कि वो मेरे पास है। जब तक आप शिवांशा से दूर रहेंगी तब तक वो जिंदा है। बाकी अगर आपने उसे डराने, धमकाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपके बेटे को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा, और आप जानती हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मैंने देवराज ठाकुर के परिवार के हर सदस्य को मरने पर मजबूर कर दिया, तो राजावत फैमिली मेरे लिए मायने नहीं रखती, वेद ने गहरी आवाज में कहा। पहली बार लीला बिल्कुल शांत थी और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन हाँ, उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। वेद के सामने वो पूरी तरह लाचार हो गई थी। वेद लीला से बात कर रहा था, तभी इस बीच शिवांशा वहां आ गई। वेद, शिवांशा ने पीछे से आवाज लगाई तो वेद ने पलट कर देखा। वेद के साइड होते ही जब शिवांशा की नजर लीला पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। लीला नजरें झुकाकर खड़ी हुई थी और उसके बाल, उसकी वो हालत देखकर शिवांशा समझ गई थी कि अंदर चिल्लाने वाला कस्टमर कोई और नहीं बल्कि लीला थी। उम्मीद है कि आप मेरी वाइफ से दूर रहेंगे और मेरी सलाह मानेंगे, वेद ने सिर हिलाकर इतना ही कहा और फिर शिवांशा के पास आ गया। शिवांशा अभी भी ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो दोनों क्या बात कर रहे हैं और लीला अपने स्वभाव के विपरीत इतनी शांत क्यों है। कुछ जल्दी ही वापस नहीं आ गई तुम? तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है और अभी तो ठीक से एक घंटा भी नहीं हुआ है, वेद ने शिवांशा के पास आकर कहा। उसने शिवांशा के बालों को कानों के पीछे किया। उनके साथ ये सब किसने किया? वो तो गुस्से से पागल हो गई होगी, वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी, मैंने सुना, शिवांशा ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नजरें लीला से हटी नहीं रही थीं। मजबूरन वेद को शिवांशा का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करना पड़ा। उसने शिवांशा की आंखों में देखते हुए तंज भरे लहजे में कहा, कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं है तुम्हें राजावत फैमिली से? तुम्हारे सामने तुम्हारा हस्बैंड खड़ा कुछ पूछ रहा है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस औरत के ऊपर है? नहीं, शिवांशा जल्दी से बोली, मैं बस हैरान हूँ। हैरान तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम जल्दी आ गई हो। खैर, अगर तुम्हारा हो गया है तो यहाँ से चलते हैं, वेद ने जवाब दिया। उसने शिवांशा को आगे कुछ पूछने का मौका नहीं दिया। स्पा में वेद पहले ही पे कर चुका था। वो शिवांशा को लेकर गाड़ी में आ गया था। क्या आपने उनके साथ ये सब किया? शिवांशा ने वेद की तरफ देखकर पूछा। वेद ने बिना कुछ कहे जवाब में कंधे उचका दिए थे। शिवांशा समझ गई थी कि ये लीला को उसकी सुबह की गलती की सजा मिली थी। वो काफी अजीब लग रही हैं, उन्हें अपने बाल बहुत प्यारे थे, शिवांशा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजर लीला के ऊपर गई तो अचानक उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगर तुम हंसना चाहो तो हंस सकती हो, वो अजीब नहीं बहुत फनी लग रही थी। पहले बताना चाहिए था कि उसे अपने बालों से इतना प्यार है,
तो मैं बचे कुचे भी नहीं छोड़ने वाला था, वेद ने सिर हिलाकर कहा। अचानक शिवांशा जोर से हंस पड़ी थी और उसके साथ वेद भी। अगर लीला उन दोनों को इस तरह खुद पर हंसते हुए देख लेती तो उसका खून गुस्से से और भी खौल उठता। हंसते हुए वेद रुक गया था और उसकी नजर शिवांशा पर पड़ी, जिसे वो पहली बार इतना खुलकर हंसते हुए देख रहा था। वेद उस लम्हे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था हमेशा के लिए। न जाने फिर उसे कब शिवांशा को इस तरह हंसते देखने का मौका मिले। वेद ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसकी हंसते हुए एक फोटो क्लिक कर ली थी, जिस पर शिवांशा आंखें छोटी करके उसकी तरफ नाराजगी भरी निगाहों से देखने लगी। ये गलत बात है, मुझे पता है मेरी फोटोज अच्छी नहीं आती और आप इसे अभी डिलीट करने वाले हो। शिवांशा ने आगे बढ़कर वेद के हाथ से मोबाइल लेना चाहा, लेकिन उसने अपना हाथ ऊपर कर लिया था। वेद ने शिवांशा की तरफ देखा और नाम में सिर हिला दिया था। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, वेद का मोबाइल बजा, जिस पर वंश का कॉल आ रहा था। वेद ने वंश को ही सब कुछ हैंडल करने के लिए कहा था और इस तरह उसका कॉल बीच में आया था, इसका मतलब यही था कि वंश को इसी वक्त उसकी ऑफिस में जरूरत थी।